नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। चीन ने उर्वरकों और दुर्लभ खनिज तत्वों की भारत की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। अमरीका अब यूक्रेन को मुफ्त हथियार या वित्तीय सहायता नहीं देगा। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार। और पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ तथा भूस्खलन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित तथा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कजान में राष्ट्रपति चिनफिंग के साथ अपनी मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि संवाद की 24वें दौर की वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि पिछले 9 महीनों में सीमा परिस्थिति में सुधार हुआ है और स्थिति शांतिपूर्ण तथा स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बीच ये वार्ताएं विशेष महत्व रखती हैं।
I'm very hopeful that like the last one, this 24th Special Representative Level Talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO Summit shortly, and therefore I think that this SR Level Talks assume a very special importance.
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का शिखर सम्मेलन में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है।
Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries.
श्री वांग ने कहा कि कजान में राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय की और सीमा विवाद के उचित समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। कल श्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरान विदेश मंत्री वांग यी ने आश्वासन दिया कि चीन भारत की उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक रिपोर्ट।
चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यारलुंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में चीन द्वारा किए जा रहे विशाल बांध निर्माण के संबंध में भारत की चिंताओं के बारे में अवगत कराया, जिसका निचले तटवर्ती राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं चीनी पक्ष ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया। भारतीय पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि इस मुद्दे पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उसने बताया कि विश्व के बाकी हिस्सों की तरह भारत का ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध है और ये आगे भी जारी। इस बीच भारतीय पक्ष ने कहा कि चीन भी इन्हीं क्षेत्रों में ताइवान के साथ सहयोग करता है। सुपर्णा सिकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर आज मॉस्को पहुंचे। वे कल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और द्विपक्षीय कार्यसूची की समीक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 21 से 26 अगस्त तक कोलंबिया और पेरू की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान सचिव कोलंबिया और पेरू की सरकारों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इनमें व्यापार और वाणिज्य, खनन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, बुनियादी ढांचा, आईटी और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। श्री कुमारन व्यापारिक समुदाय और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका अब यूक्रेन को मुफ्त हथियार या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार बेचेगा जिसका खर्च यूरोपीय देश नेटो के माध्यम से वहन करेंगे। उन्होंने क्षेत्रीय रियायतों पर चर्चा सहित संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार हैं। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे बिना किसी पूर्व शर्त के पुतिन से किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद ये बात कही। श्री ट्रंप ने कहा कि बैठक की तैयारियां चल रही हैं लेकिन स्थगन अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीनों नेताओं के बीच एक शिखर सम्मेलन होगा। इस बीच श्री डोनाल्ड ट्रंप ने आज श्री व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। श्री पुतिन ने श्री ट्रंप की पहल का स्वागत किया और शांति प्रयासों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने भविष्य की वार्ताओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों को शामिल करने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना का एक वर्ष के लिए विस्तार करने संबंधी फ्रांस के मसौदा प्रस्ताव पर कल चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना की अवधि इस वर्ष 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। इजराइल और अमेरिका ने कथित रूप से इस प्रस्ताव का विरोध किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने आज अपने क्षेत्र के पास 10 चीनी सैन्य विमानों और 6 नौसैनिक जहाजों का पता लगाने की सूचना दी। मंत्रालय ने कहा कि 2 विमान ताइवान जलडमरू मध्य की मध्य रेखा पार करके द्वीप के उत्तरी वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इस गतिविधि पर नजर रखने और उसे रोकने के लिए लड़ाकू विमान, नौसैनिक उपकरण और मिसाइल प्रणालियां तैनात कर दी हैं। चीनी घुसपैठ का ये लगातार तीसरा दिन है। पाकिस्तान में मानसून की वर्षा के कारण पूरे पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका उत्पन्न है। इसमें पिछले जून से लेकर अब तक 657 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच समाचारों के अनुसार सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में कई ईसाई नेताओं ने इस निंदा के कारण जारनवाला शहर में 16 अगस्त 2023 को भड़के दंगे के पीड़ितों को न्याय देने में सरकार की विफलता पर फैसलाबाद जिले में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि दंगे के दौरान 27 गिरजाघरों और 23 घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह।
महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इनके साथ साथ प्रतीका रावल, हरलीन देवल, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और श्री चरणी को भी टीम में स्थान दिया गया है। महिला विश्व कप की शुरुआत 30 सितम्बर से होगी। वहीं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान भी आज हो गया। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल होंगे। ये प्रतियोगिता 9 सितम्बर से शुरू होगी। उधर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने आज एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया जबकि रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रश्मिका ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। चीन ने उर्वरकों और दुर्लभ खनिज तत्वों की भारत की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अमेरिका यूक्रेन को मुफ्त हथियार या वित्तीय सहायता नहीं देगा। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए तैयार। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ भूस्खलन। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।